मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 26 फरवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने दो नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस में एडमिशन लिए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अभिषेक पटेल जबलपुर मध्य प्रदेश से और धर्मेंद्र कुमार सासाराम बिहार से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में मुझे लगता है कि आपने अनुमान लगा लिया होगा कि सर आप इस मुद्दे पर बात करने जा रहे होंगे और आपने जो अनुमान लगाया है वो बिल्कुल सही है। नहीं लगाया हो तो आप थोड़ा सा अनुमान लगाएं, मैं विषय की जानकारी आपको नहीं दे रहा हूं। आइए इससे पहले हम कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। दिल्ली में CAA के विरोध में जो अभी हिंसाएं हुई हैं ये आज के अखबारों में मुख्य खबर है और न्यूज में भी ये बात थी CAA। अब आप देखिए कि ये जो CAA का जो विरोध है वो धीरे धीरे बहुत व्यापक होता चला जा रहा है। राजधानी इसकी चपेट में आ चुकी है, हमारे देश की राजधानी। और यह भी हिंसा की सबसे बड़ी घटना उस दिन हुई है जिस दिन के हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हमारे देश की राजधानी में थे। नहीं मालूम कि इसके पीछे और क्या दूसरी शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है। हम सिविल सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी एक्ट को संसद ने पारित कर दिया है, नो डाउट कि CAA का जो अभी एक्ट बना है इसे संसद ने पारित किया है। और अगर संसद किसी एक्ट को पारित कर देती है या मतलब बिल को पारित कर देती है तो सीधी सी बात है कि राष्ट्र ने उसे पारित किया है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए और पूरे देश में उसे लागू किया जाना चाहिए। राज्य भी उसे लागू करने के लिए बाध्य हैं। ये हमारी एक संवैधानिक स्थिति है, राइट? अब इसका एक जो दूसरा पक्ष है जिस पर आपको विचार करना सिविल सर्विस की तैयारी की दृष्टि से, वो ये कि मान लीजिए कि कोई एक्ट पारित हो गया, कोई बिल पारित हो गया, कानून बन गया, ठीक है, अधिनियम बन गया, और अधिनियम बनने के बाद पूरा देश उसका विरोध कर रहा है, या पूरा देश न भी करे, कहा तो यही जाता है पूरा देश तो क्या विरोध करेगा और क्या समर्थन करेगा, लेकिन चलिए मान लीजिए कि देश में आक्रोश है और लोगों में संदेह है या कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, अस्त व्यस्तता हो रही है, तो अब क्या स्थिति होनी चाहिए इस पर विचार कीजिएगा कि अगर देश विरोध करे तो क्या उस एक्ट को वापस ले लिया जाना चाहिए, क्या उसे स्थगित कर दिया जाना चाहिए, या कुछ उस एक्ट के विरोध में और कोई एक्ट पारित किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, क्या सरकार इसे विड्रॉ कर ले। तो इस तरह के कुछ बिंदु हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो CAA है उसका विरोध जनता के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कैसे किया जा रहा है। दूसरी तरफ बहुत से राज्य भी इसका विरोध कर रहे हैं और उन राज्यों ने बकायदे अपनी असेंबली से इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किए हैं। तो हमारा तो संघवाद है, यानी कि हम चूंकि एक फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं तो राज्यों के भी भावनाओं और विचारों और हितों का हमें ध्यान रखना है। तो इस पर थोड़ा सा अलग अलग डायमेंशन से आप विचार कीजिएगा, और अगर आप इस पर विचार कर लेते हैं तो मान करके चलिए कि अब आपको पॉलिटिकल साइंस भी आ गया है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया है और आपको पॉलिटी भी आ गई है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आप यूं कह लीजिए कि एक ही वृक्ष की अलग अलग शाखाएं। मित्रों, न्यूज में आपने एक शब्द सुना, मधुबनी पेंटिंग्स। जब मिसेस ट्रंप स्कूल में गई थी, दिल्ली के एक स्कूल में, तो वहां उन्हें मधुबनी पेंटिंग्स भेंट की गई। सिविल सर्विस में होता क्या है कि खासकर कलाओं के मामले में मैंने देखा है कि जब प्रश्न पूछा जाता है और खासकर प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनका संबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पिछले 1-1.5 साल की किसी घटना से होता है। अब ये बात अलग है कि हमने उस घटना को पर ध्यान दिया या नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर हमारे जब प्रधानमंत्री ने कुछ हमारे विदेशी जो मेहमान आए थे उनको पता लगा कि कुछ और भेंट दिए हैं, कुछ और भेंट देते रहते हैं, तो उस समय अखबारों में काफ़ी चर्चा में वो चीज़ें आ जाती हैं। चीन के जैसे राष्ट्रपति आए थे तो उनको कुछ भेंट दी गई और उन पर मैंने आप लोगों को ध्यान भी दिलाया था। तो यहां मैं अब आपको मधुबनी पेंटिंग्स पर ध्यान दिला रहा हूं कि इसके थोड़ी सी पूछे जाने की संभावना दूसरों की तुलना में बेहतर हो जाती है। तो आप देख लीजिए कि मधुबनी पेंटिंग्स क्या है। मधुबनी बिहार का एक नगर है, उसके आसपास जो पेंटिंग की जाती है उसे हम मधुबनी पेंटिंग्स कहते हैं। बिहार और जो नेपाल का जो तराई क्षेत्र है वहां ये पेंटिंग्स बहुत ही पॉपुलर है, उसे मिथिला क्षेत्र भी कहते हैं, तो कुछ लोग इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये उंगली से भी बनाई जाती है, ब्रश से भी बनाई जाती है, पेन के नीब से भी बनाई जाती है, माचिस के तीली से भी बनाई जाती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ज़्यादातर जो नेचुरल कलर होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और ये जो पेंटिंग्स हैं इनमें आपको जन्म, विवाह, उपनयन संस्कार, होली, और दूसरे जो त्यौहार हैं काली पूजा दुर्गा पूजा इन सब के अवसर पर बनाए जाते हैं और उनमें इन सब का डिपिक्शन भी होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें इतना बारीक काम होता है, मतलब मैं अपनी दृष्टि से बता रहा हूँ कि आंखें नहीं ठहर पाती और आश्चर्य होता है कि यार ये पेंटिंग बनाई कैसे जाती है। और सच पूछे तो जो चित्रकलाओं का हमारा जो लोक क्षेत्र है यानी लोक में जो चित्रकलाएँ बनाई जाती हैं उनमें आपको लगभग लगभग इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स होती है, उसकी बारीकी देख करके तो दंग रह जाना पड़ता है। और मधुबनी पेंटिंग्स के साथ तो सबसे बड़ी विशेषता एक ये भी है कि इसे बकायदे भौगोलिक संकेत मिला हुआ है, GI टैग मिला हुआ है। इसका मतलब है कि ये पेंटिंग्स भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग्स में से एक है। तो मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और मैं समझता हूं कि विषय क्या होगा आपने जरूर सोच लिया होगा और वो है भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे। और वो इसका जो संदर्भ हुआ यही कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए थे, उसी बात को लेकर। अब आप देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए, भारत आने के बाद क्या क्या हुआ उनका बहुत विस्तार से वर्णन भी आपने पढ़ा होगा क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो लगता है। TV चैनल्स भी चूंकि आंखों देखा हाल सुना रहे थे तो वो भी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो वो भी आप सबने देखा होगा। लेकिन हमारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, देखिए इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पहले से ही आने शुरू हो गए थे, आज भी हैं और अभी कुछ दिनों तक आर्टिकल्स आएंगे भी। उसमें बाकायदे समीक्षाएं होंगी कि ट्रंप साहब का जो यहाँ विजिट रही है वो विजिट कितनी सक्सेस रही है भारत की दृष्टि से भी और अमेरिका की दृष्टि से भी। ये सब आप पढ़ते रहिए, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट करते रहिए चूंकि वो एक बड़ा विषय है। लेकिन मैं आपको यहाँ आज जो बताने जा रहा हूँ कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण लग रहा है, और इसकी शुरुआत हम इस बात से करें कि क्या इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि भारत और अमेरिका के संबंध कितने गाढ़े हैं, कितने प्रगाढ़ हैं, कितने कमजोर हैं, क्या इस तरह के स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मुझे लगता है मित्रों कि इस तरह के नहीं पूछे जाएंगे, या कि ट्रंप जब भारत आए थे तो कौन कौन से समझौते हुए और इन समझौतों का मूल्यांकन कीजिए, क्या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं खासकर और जो मध्य एशिया के देश होते हैं उनके संदर्भ में तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की थोड़ी सी संभावनाएं होती हैं, लेकिन अमेरिका या कह लीजिए पश्चिम यूरोप के देश इस तरह के जो बहुत, या चाइना है उनके साथ नहीं। उसका कारण यह है कि इन देशों के साथ हमारे जो संबंध हैं पहली बात थोड़े से जटिल किस्म के हैं, दूसरी बात यह कि इनके संबंधों के बारे में जब हम अपनी बात करते हैं तो इनके संबंध और भी बहुत लोगों से जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए चाइना के साथ जब हम अपने संबंधों की बात करेंगे तो हमारे संबंध सिर्फ भारत और चाइना के नहीं रह जाएंगे, पता लगा कि चाइना में फिर आपके पाकिस्तान भी उलझा हुआ है, चाइना में फिर रशिया भी उलझा हुआ है, चाइना में फिर अमेरिका भी उलझा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि एक चतुष्कोण बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। तो ऐसे समय में स्वाभाविक है कि जो UPSC है वो ये जानना चाहेगी कि ये जो स्टूडेंट है ये इसकी डिप्लोमेटिक जटिलताओं को कितना समझ रहा है, क्योंकि जब आप सर्विस भरेंगे तो उसमें इंडियन फॉरेन सर्विस भी तो भरेंगे, आप इंडियन फॉरेन सर्विस के भी तो ऑफिसर बनना चाह रहे हैं। अमेरिका भी दोस्तों इसी तरह का है, खासकर मैं 2019 में जो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें एक तो सीधे सीधे अमेरिका पर है और दूसरा क्वेश्चन भारत की स्थिति पर है, वो आपके सामने रख रहा हूं और इससे आपको यह गाइडलाइंस मिलेंगी कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों पर यदि इस वर्ष कोई प्रश्न आया तो वो किस तरीके का हो सकता है, आप प्रश्न के पैटर्न का थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। देखिए जो 20th लास्ट क्वेश्चन है ये जनरल स्टडीज मेन्स का सेकेंड पेपर जो होगा आपका, ध्यान से सुनिएगा, ये ध्यान से सुनने की चीजें होती हैं मित्रों, ये केवल वैसे ही नहीं कि आपने सुना और बात खत्म हो गई, नहीं, आपको थोड़े से डेप्थ में जाना होगा। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश का कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है जो भारत के आत्मसमादर और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके, ये इन्वर्टेड में है, उपर्युक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। अब देखिए उस समय ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, अब उन पर मैं नहीं जा रहा हूं, अब ये बहुत सिंपल प्रश्न है लेकिन इसको आप हल करेंगे कैसे, ये हल तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल तैयारी है उससे हटाकर और आगे दूसरी दृष्टि से ना देखें। इसे मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। व्हाट इंट्रोड्यूसेस फ्रिक्शंस इनटू द टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट इज दैट वाशिंगटन इज स्टिल अनेबल टू फाइंड फॉर इंडिया ए पोजिशन इन इट्स ग्लोबल स्ट्रेटेजी विच वुड सेटिस्फाई इंडियाज नेशनल सेल्फ एस्टीम एंड एम्बिशंस एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब हम एक और प्रश्न देखते हैं, है ना, इंटरनेशनल सिनेरियो में देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इससे हमें अनुमान लगेगा। अब 2013-14 को तो छोड़ दीजिए, 14-15 तक के प्रश्न देखेंगे तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत काफी थोड़े से स्ट्रेट किस्म के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 17 के बाद उसका करेक्टर बदल गया। 17, 18, 19 की तो हम बात ही कर रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेटजी ज्यादा हो गई, जटिलताएं ज्यादा हो गई है, रणनीति की बात हो रही है, डिप्लोमेसी की बात हो रही है। इससे पहले सीधे सीधे रिलेशंस की बात हो रही थी कि दो देशों के बीच में किस तरह के रिलेशंस हैं, अब वो चीज थोड़ी सी बदल गई है। अब आप देखिए कि एक और प्रश्न है जो 19th ही है, इससे ठीक पहले। उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नव भूमिका के कारण उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घकाल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है, विस्तार से समझाइए। The long sustained image of India as a leader of the oppressed and marginalized nations has disappeared on account of its new found role in the emerging global order. Elaborate. अब आप देखिए कि उसमें क्या कह रहे हैं। अब इसमें एक तरह से पूरा का पूरा वैश्विक परिदृश्य ले लिया है और ये कहना ये चाह रहा है कि जो छोटे छोटे देश हैं, जो गरीब देश हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता, जिसमें अफ्रीका के देश हैं और छोटे छोटे राष्ट्र हैं, खासकर अगर हम इसे पुराने समय में जोड़ना चाहें तो आप नॉन अलाइन मूवमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं, तो भारत इनके लीडर के रूप में काम कर रहा था, वर्ल्ड फोरम पर इनकी इनकी मदद करता था, इनके डिफेंस में सामने आता था, लेकिन कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि भारत शायद अपने उस रोल से विमुख हो रहा है, उसे निभा नहीं पा रहा है। इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। यह बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन इतना सरल नहीं कि आपको इसके बने बनाए उत्तर कहीं मिल जाएंगे। आप उसे पढ़ लीजिए, रट लीजिए और वहां लिखाइए। जब तक आपकी समझ इंटरनेशनल रिलेशन पर व्यापक रूप में नहीं होगी, नजर आपकी चारों तरफ नहीं है, तब तक फिर इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं लिख सकेंगे। तो दोस्तों, मैं खासकर भारत अमेरिका के संबंधों के माध्यम से आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं कि अब किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, अब ट्रंप साहब भारत आए, अब आप देखिए कि ठीक है, हम अपने लाभ हानि की बात करेंगे, ट्रंप अपने लाभ हानि की बात करेंगे, तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम भी ट्रंप की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि ट्रंप ही हमारी आवश्यकता है। हमारे तीन सबसे बड़े तत्व हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत आने के लिए बाध्य करेंगे, बाध्य किया और आगे भी झुकने के लिए बाध्य करेंगे। पहला है, हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, हम 135 करोड़ लोग हैं, हमारा केवल 1/10 पॉपुलेशन अमेरिका के पास है और उसके पास प्रोडक्शन है। आप प्रोडक्शन, अपना उत्पाद बेचने के लिए बाजार तो चाहिए, इतना बड़ा बाजार उनको कहां मिल सकेगा, बाजार है। फिर हमारे प्रवासी भारतीय 30-35 लाख लोग हमारे अमेरिका में रह रहे हैं और आपको मालूम है कि अभी चुनाव होने हैं, उनके वोट उनको चाहिए और ये हमारे जो प्रवासी भारतीय, ऐरे गहरे प्रवासी भारतीय नहीं है, वहां वो बहुत ही प्रोमिनेंट पोजिशन पर भी हैं और आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी उनको मदद चाहिए। तो यहां राजनीति भी आ गई। और फिर पूरे के पूरे एशिया में चीन को ले लीजिए, चीन और अमेरिका के बीच में क्या तनाव चल रहे हैं आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ऐसी स्थिति में उसे चीन की शक्ति को संतुलित करने के लिए किसकी मदद चाहिए? एशिया में तो भारत की मदद से ये बात हो सकती है, नहीं तो छोटे छोटे देश तो कुछ कर नहीं सकते। जापान रशिया उतना घास डालेंगे नहीं, यानी कि उतनी तरजीह नहीं देंगे, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाना अमेरिका की भी अपनी मजबूरी है। ये बात हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही हमारी आवश्यकता है, नो डाउट हमारे लिए आवश्यकता है, पाकिस्तान के मामले में आवश्यकता पड़ती है, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत हाई है तो हमारी वह जरूरत है, उनके पास कैपिटल बहुत है, हम अपने देश में निवेश चाह रहे हैं तो वो भी हमारी जरूरत है, हमारा थोड़ा सा निर्यात संतुलन, हमारा जो व्यापार संतुलन है वो भी उनके पक्ष में झुका हुआ है, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सा निर्यात बढ़ जाए तो वो थोड़ा मामला व्यापार का ठीक ठाक हो जाए, तो वो भी हमारी आवश्यकता है, लेकिन ये विन विन सिचुएशन की बात है, एक तरफा मामला नहीं है। तो मित्रों, इन तथ्यों को ध्यान में रख करके अब जो हमें भारत अमेरिका संबंधों पर आर्टिकल्स आएंगे, जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको समझने में और विश्लेषण करने में अधिक आसानी हो सकेगी। दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। और इसी के साथ ही दोस्तों अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।